नमस्कार। आज की बातचीत में हम गोता लगा रहे हैं अध्याय 5 में। हाँ, इसका नाम है द वर्ब मूवर्स एंड डूअर्स।
नमस्कार। बिल्कुल, वर्ब्स यानी क्रियाएं।
हमारे सामने ना इस अध्याय से जुड़े कुछ नोट्स और हिस्से हैं। इनका मकसद है क्रियाओं की दुनिया को समझना, और खास तौर पर वो जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्रियाओं का चक्कर है ना।
हाँ, वो फर्क बहुत अहम है,
उसी को पकड़ना है। ये सामग्री थोड़ी सी पाठ्य पुस्तक जैसी है। कुछ पन्ने हैं, कुछ सीखने के लक्ष्यों की सूची है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस अध्याय की जो मोटी मोटी बातें हैं उन्हें पकड़ेंगे, उन्हें समझेंगे।
ठीक है,
ध्यान रहेगा फाइनाइट बनाम नॉन फाइनाइट क्रियाओं के फर्क पर। और हाँ, सहायक क्रियाएं, मोडल्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स, इन सब पर भी बात करेंगे।
जी,
कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान लगे और हम सिर्फ इसी अध्याय की जानकारी तक ही सीमित रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल।
बिल्कुल।
इस अध्याय की शुरुआत ही काफी मजेदार है। ये कहता है कि क्रियाएं जो हैं वो वाक्य के एक्शन हीरो हैं या काम करने वाले।
हाँ, मूवर्स एंड डूअर्स।
और इसमें वो एक ईबी ग्रामर बडी का भी जिक्र है। बच्चों को समझाने का ये नजरिया काफी अच्छा लगा मुझे।
बिल्कुल, देखिए क्रियाएं ही तो हैं जो बताती हैं कि वाक्य में चल क्या रहा है। कोई काम हो रहा है मतलब एक्शन, या कोई अवस्था है स्टेट, या कोई घटना अकरेंस। और जैसा अध्याय की भूमिका में इशारा है, कुछ क्रियाएं होती हैं मेन हीरो मतलब मेन वर्ब्स, जो असली काम या अवस्था बताती हैं।
अच्छा।
और कुछ होती हैं सहायक कलाकार जैसी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। यहीं से बात शुरू होती है मेन और ऑक्सिलरी क्रियाओं की।
हाँ, और लगता है इस अध्याय का सबसे ज्यादा जोर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्रियाओं के बीच के अंतर पर ही है।
बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
श्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी दिया है, वो रोहन और माया वाला। रोहन कहता है आई प्ले फुटबॉल।
हाँ,
और माया कहती है टू प्ले फुटबॉल इज फन।
हाँ, वो आई प्ले फुटबॉल और टू प्ले फुटबॉल इज फन।
बिल्कुल, दोनों में प्ले शब्द है पर इस्तेमाल एकदम अलग है। एक जगह तो वो सचमुच खेलने का काम कर रहा है, एक्शन वर्ब।
और दूसरी जगह वो बस उस काम के नाम जैसा लग रहा है, खेलना।
एकदम सही पकड़ा। यही फाइनाइट क्रियाओं का असली रोल सामने आता है। अध्याय के आखिर में जो सार दिया है ना, वो बताता है कि फाइनाइट क्रियाएं वो होती हैं जो अपने आप को बदल लेती हैं।
अच्छा, बदल लेती हैं किसके हिसाब से?
हाँ, कर्ता, सब्जेक्ट और काल, टेंस के हिसाब से।
जैसे श्रोत का ही उदाहरण लें, शी रन्स फास्ट। यहाँ रन्स क्रिया है और ये शी मतलब जो एक वचन करता है उसके साथ मेल खाती है।
ठीक।
अगर कर्ता दे होता मतलब बहुवचन, तो ये रन बन जाती, दे रन फास्ट।
अच्छा, हाँ। और माया कहती है टू प्ले फुटबॉल इज फन।
हाँ, वो आई प्ले फुटबॉल और टू प्ले फुटबॉल इज फन।
बिल्कुल, दोनों में प्ले शब्द है पर इस्तेमाल एकदम अलग है। एक जगह तो वो सचमुच खेलने का काम कर रहा है, एक्शन वर्ब,
और दूसरी जगह वो बस उस काम के नाम जैसा लग रहा है, खेलना।
एकदम सही पकड़ा। यही फाइनाइट क्रियाओं का असली रोल सामने आता है। अध्याय के आखिर में जो सार दिया है ना, वो बताता है कि फाइनाइट क्रियाएं वो होती हैं जो अपने आप को बदल लेती हैं।
अच्छा, बदल लेती हैं किसके हिसाब से?
हाँ, कर्ता, सब्जेक्ट और काल, टेंस के हिसाब से। जैसे श्रोत का ही उदाहरण लें, शी रन्स फास्ट, यहाँ रन्स क्रिया है और ये शी मतलब जो एक वचन करता है उसके साथ मेल खाती है।
ठीक।
अगर कर्ता दे होता मतलब बहुवचन, तो ये रन बन जाती, दे रन फास्ट।
अच्छा हाँ, और अगर बात भूतकाल की होती तो शायद रैन हो जाती, शी रैन फास्ट। तो ये वो क्रियाएं हैं जो वाक्य का इंजन है, कर्ता से बंधी हैं और समय का भी पता देती हैं।
अच्छा, तो मतलब फाइनाइट क्रियाएं वो हैं जो वाक्य के नियमों में बंधी हैं। कर्ता कौन है, बात कब की हो रही है, इन सब से उनका रूप बदलता है।
बिल्कुल, बंधी हुई क्रियाएं कह सकते हैं।
तो फिर ये नॉन फाइनाइट क्रियाएं क्या भला है, वो कैसे अलग है इनसे?
नॉन फाइनाइट क्रियाएं थोड़ी आजाद किस्म की होती हैं।
आजाद कैसे?
मतलब उन पर कर्ता के एक वचन या बहुवचन होने का, या बात वर्तमान की है या भूतकाल की, इसका सीधा असर नहीं पड़ता। वो अपना रूप नहीं बदलती
अच्छा,
और वो वाक्य में मुख्य क्रिया का काम भी नहीं करती। अक्सर वो कुछ और बन जाती हैं, कभी संज्ञा बन गई, कभी विशेषण, कभी क्रिया विशेषण।
अरे वाह।
अध्याय के जो लर्निंग आउटकम्स हैं और वो सार वाली तालिका, उसमें इनके तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरंड्स और पार्टिसिपल्स।
ठीक है, ये तो वाकई एक बड़ा फर्क है। फाइनाइट यानी बंधी हुई, नियम मानने वाली,
हाँ
और नॉन फाइनाइट यानी थोड़ी आजाद, रूप न बदलने वाली।
हाँ मोटे तौर पर यही बात है।
अध्याय में क्रियाओं को और भी तरह से बांटा गया है, जैसे आपने शुरू में कहा था, मुख्य बनाम सहायक। इसे थोड़ा और खोलेंगे।
हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा हमने पहले इशारा किया, मुख्य क्रियाएं वाक्य का असली काम या अवस्था बताती हैं। वो अपने आप में पूरी होती हैं, जैसे शी सिंग्स वेल।
वो अच्छा गाती है, सिंग्स मुख्य क्रिया।
सही। अब दूसरी तरफ सहायक क्रियाएं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, वो मुख्य क्रिया की मदद करने आती हैं।
मदद किस चीज में?
काल बताने में मदद करती हैं, या वाक्य का भाव या वाच्य बनाने में, जैसे शी इज सिंगिंग वेल।
अच्छा, वो अच्छा गा रही है।
हाँ, यहाँ इज सहायक क्रिया है और सिंगिंग मुख्य क्रिया का ही एक रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये दोनों मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं।
ठीक है।
और दिलचस्प बात यह है कि फाइनाइट क्रियाएं मुख्य भी हो सकती हैं, जैसे सिंग्स, और सहायक भी, जैसे इज। सहायक क्रियाएं भी कर्ता और काल के अनुसार बदलती हैं।
अच्छा, कैसे?
जैसे आई एम सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, शी वॉज सिंगिंग। देखिए, एम, आर, वॉज बदल रहे हैं ना, तो ये फाइनाइट सहायक क्रियाएं हैं।
अच्छा, ये बात है। मतलब सहायक क्रियाएं भी फाइनाइट हो सकती हैं, ये क्लियर हुआ। अब अध्याय में सकर्मक ट्रांजिटिव और अकर्मक इनट्रांजिटिव क्रियाओं का भी जिक्र है। ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है।
नहीं, ये काफी सीधा है असल में। देखिए, सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव क्रियाएं वो हैं जिन्हें अपना मतलब पूरा करने के लिए कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है।
कर्म मतलब ऑब्जेक्ट।
हाँ, ऑब्जेक्ट यानी क्रिया का असर कर्ता से चलकर किसी चीज या व्यक्ति पर पड़ता है, जो कर्म कहलाता है। जैसे ही रीड्स अ बुक।
वो एक किताब पढ़ता है।
हाँ, यहाँ रीड्स क्रिया है और उसका असर किस पर पड़ रहा है? अ बुक पर। ये अ बुक कर्म है। अगर हम सिर्फ कहें ही रीड्स, तो सवाल उठता है, भाई क्या पढ़ता है?
हाँ, अधूरा लगता है।
बिल्कुल, वाक्य अधूरा लगता है। तो रीड्स यहाँ सकर्मक क्रिया है।
समझ गए, कर्म चाहिए बात पूरी करने के लिए।
सही। और अकर्मक यानी इनट्रांजिटिव क्रियाएं वो होती हैं जिन्हें कर्म की जरूरत नहीं होती। क्रिया का असर कर्ता तक ही रहता है, आगे नहीं जाता।
अच्छा, जैसे?
जैसे शी रन्स, वो दौड़ती है। यहाँ रन्स अकर्मक है। हमें ये पूछने की जरूरत नहीं कि क्या दौड़ती है, बात अपने आप में पूरी है।
हाँ, ये तो है।
या जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं बस।
ये तो आसान था। सकर्मक मतलब कर्म चाहिए, अकर्मक मतलब कर्म नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा सहायक क्रियाओं पर लौटते हैं। मॉडल्स की बात हो रही थी, अध्याय में इन पर खास ध्यान दिया गया है।
हाँ, मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज।
स्रोत में कुछ वाक्य हैं, जैसे वी शुड रिसाइकल वेस्ट, यू मस्ट वेयर योर आईडी कार्ड, आई कैन प्ले द गिटार। इन शुड, मस्ट, कैन में क्या खास बात है, ये बाकी सहायक क्रियाओं जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव से अलग कैसे हैं?
देखिए, मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये सहायक क्रियाओं का ही एक खास ग्रुप है, पर ये सामान्य सहायक क्रियाओं बी, हैव, डू से थोड़े अलग हैं।
कैसे अलग हैं?
ये मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसका मतलब नहीं बदलते, बल्कि उसमें एक खास भाव या नजरिया जोड़ते हैं, एक तरह का मूड या मोड बताते हैं।
अच्छा, भाव, जैसे कि?
जैसे संभावना बताना, पॉसिबिलिटी, या क्षमता, एबिलिटी। आई कैन प्ले द गिटार, ये क्षमता बता रहा है। इट माइट रेन टुडे, ये संभावना बता रहा है। या फिर अनुमति, परमिशन, मे आई कम इन,
ठीक है,
आवश्यकता, नेसेसिटी, या कोई अनिवार्य का, ऑब्लिगेशन, यू मस्ट वेयर योर आईडी कार्ड, ये जरूरी है, अनिवार्यता है।
ओके,
या सलाह, वी शुड रिसाइकल वेस्ट, ये एक सलाह है।
समझ गई, ये तो मतलब में काफी फर्क लाते हैं।
बिल्कुल, और ये भी फाइनाइट क्रियाएं ही होती हैं, क्योंकि ये वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ मिलकर काम करती हैं, कर्ता से जुड़ी होती हैं, हालांकि इनका रूप ज्यादा बदलता नहीं है एस वगैरह लगाकर।
हाँ, ये मैंने ध्यान दिया, ही कांस नहीं होता।
नहीं होता, और एक और अहम बात, जैसा स्रोत में भी इशारा है, मॉडल्स के बाद जो मुख्य क्रिया आती है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में होती है, बिना टू के।
बेस फॉर्म मतलब?
मतलब क्रिया का मूल रूप, जैसे प्ले, वेयर, रिसाइकल। तो हम कहते हैं कैन प्ले, मस्ट वेयर, शुड रिसाइकल, ऐसा नहीं कह सकते ही कैन प्लेज या वी शुड टू रिसाइकल।
अच्छा, ये नियम है।
हाँ, इनका सही इस्तेमाल भाषा को ज्यादा सटीक और प्रभावी बनाता है।
ये तो बहुत काम की बात है, मॉडल्स वाकई खास हैं। चलिए, अब वापस उन नॉन फाइनाइट दोस्तों के पास चलते हैं जिनका जिक्र पहले हुआ था, इन्फिनिटिव्स, जेरंड्स और पार्टिसिपल्स। अध्याय के हिसाब से पहला है इन्फिनिटिव, ये क्या होता है?
इन्फिनिटिव क्रिया का वो रूप है जो आमतौर पर टू प्लस वर्ब जैसा दिखता है, मतलब टू के साथ क्रिया का मूल रूप।
अच्छा, टू प्लस वर्ब, जैसे?
जैसे वो माया वाला उदाहरण था, टू प्ले फुटबॉल इज फन, यहाँ टू प्ले एक इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिए, ये वाक्य की मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया तो इज है, यहाँ टू प्ले वाक्य के कर्ता की तरह काम कर रहा है, मतलब एक संज्ञा की तरह, फुटबॉल खेलना।
अच्छा, संज्ञा की तरह।
हाँ, और श्रुत में एक और उदाहरण था वो सुनने वाले अभ्यास से, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रोबोट, यहाँ टू बिल्ड बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है।
ठीक है, मतलब मकसद बता रहा है।
हाँ, तो इन्फिनिटिव अक्सर वाक्य में संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण का काम करते हैं, पर मुख्य क्रिया का नहीं, और ये कर्ता या काल के हिसाब से बदलते नहीं। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड, दे वॉन्ट टू बिल्ड, टू बिल्ड वैसा ही रहा।
अच्छा, तो टू के साथ क्रिया का पहला रूप जो काम का नाम या मकसद बताए और बदले नहीं, समझ गई। अगला है जेरंड।
यस।
इसके बारे में अध्याय क्या कहता है? ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, नाम थोड़ा हटके है, पर चीज सीधी है। जेरंड क्रिया का वो रूप है जिसके अंत में आईएनजी लगता है, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी।
वर्ब प्लस आईएनजी, ये तो कंटिन्यूअस टेंस जैसा लग रहा है, इज सिंगिंग वाला।
हाँ, दिखने में वैसा ही है, पर काम बिल्कुल अलग है। जेरंड वाक्य में क्रिया का काम नहीं करता, बल्कि संज्ञा नाउन का काम करता है।
संज्ञा का? आईएनजी वाला रूप संज्ञा कैसे बन गया?
ऐसे कि वो किसी काम या गतिविधि का नाम बन जाता है।
जैसे सुनने वाले अभ्यास में ही था, क्लीनिंग इज बोरिंग।
हाँ,
यहाँ क्लीनिंग का मतलब है सफाई करना। ये एक काम का नाम है, एक संज्ञा है जो वाक्य का कर्ता है।
अच्छा,
क्लीनिंग इज बोरिंग।
हाँ, समझी।
उसी वाक्य में आगे है, बट बिल्डिंग थिंग्स इज फन। यहाँ बिल्डिंग, चीजें बनाना, भी एक संज्ञा की तरह कर्ता का काम कर रहा है।
ठीक है।
स्रोत के पैनल उदाहरण में था, रनिंग मेक्स हर हैप्पी। यहाँ रनिंग मतलब दौड़ना, ये भी संज्ञा है।
एक और उदाहरण,
इन्वेंटिंग कूल गैजेट्स इज माई ड्रीम।
हाँ,
यहाँ इन्वेंटिंग मतलब आविष्कार करना, ये भी संज्ञा है।
अरे वाह,
तो वर्ब प्लस आईएनजी जब संज्ञा बन जाए तो वो जेरंड है। ये भी नॉन फाइनाइट है, मतलब
बिल्कुल,
ये भी कर्ता या काल के हिसाब से नहीं बदलता। हाँ, और वाक्य में मुख्य क्रिया का काम नहीं करता। ये तो इन्फिनिटिव जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा दोनों ही क्रिया से निकलकर संज्ञा का काम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा टू प्ले फुटबॉल इज फन, वैसे ही प्लेइंग फुटबॉल इज फन भी तो कह सकते हैं।
बिल्कुल सही, अक्सर इन्फिनिटिव और जेरंड एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, खासकर जब वो वाक्य के कर्ता या कर्म के रूप में आए। टू रन इज फन और रनिंग इज फन दोनों का मतलब करीब करीब एक ही है. हालांकि कभी कभी हल्के फुल्के अर्थ या स्टाइल में फर्क आ जाता है, पर वो थोड़ी गहरी बात है. अभी के लिए ये समझना काफी है कि दोनों ही नॉन फाइनाइट हैं और संज्ञा की भूमिका निभा सकते हैं.
ठीक है, समझ गई. अब तीसरा नॉन फाइनाइट रूप है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल अध्याय की सार तालिका कहती है कि इनका उपयोग विशेषण एडजेक्टिव्स के रूप में होता है. ये कैसे होता है?
हाँ, पार्टिसिपल्स भी क्रिया से ही बनते हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं.
अच्छा, क्रिया से बना विशेषण.
हाँ, इनके दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल.
प्रेजेंट और पास्ट, ये क्या है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में जेरंड जैसा ही होता है, क्रिया के अंत में आईएनजी लगता है, जैसे रनिंग, स्माइलिंग, इंटरेस्टिंग. ये अक्सर किसी जारी काम या गुण को बताता है.
अच्छा, आईएनजी वाला.
हाँ, और पास्ट पार्टिसिपल आमतौर पर क्रिया का तीसरा रूप होता है, जैसे ब्रोकन, रिटन, इंटरेस्टेड, जिसके अंत में ईडी, ईएनटी वगैरह लग सकता है. ये अक्सर पूरे हो चुके काम या अवस्था को बताता है.
ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसा.
बिल्कुल. अब उदाहरण देखिए, अ रनिंग हॉर्स,
एक दौड़ता हुआ घोड़ा.
हाँ, यहाँ रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हॉर्स की विशेषता बता रहा है. कैसा घोड़ा? दौड़ता हुआ. तो रनिंग यहाँ विशेषण है. या फिर अ ब्रोकन चेयर,
एक टूटी हुई कुर्सी.
सही. यहाँ ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल चेयर की विशेषता बता रहा है. कैसी कुर्सी? टूटी हुई. तो ये क्रिया के रूप हैं, रन से रनिंग, ब्रेक से ब्रोकन, पर काम विशेषण का कर रहे हैं.
तो ये रनिंग उस जेरेंड वाले रनिंग से अलग है. रनिंग इज फन.
दिखने में तो एक जैसे हैं, ये कन्फ्यूजन हो सकता है.
हाँ, ये एक आम कन्फ्यूजन है, बिल्कुल हो सकता है, पर फर्क उनके काम में है. जब वर्ब प्लस आईएनजी संज्ञा का काम करे, किसी चीज या काम का नाम बने, तो वो जेरेंड है. जैसे रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ रनिंग मतलब दौड़ना.
ठीक है, यहाँ ये संज्ञा है.
और जब वर्ब प्लस आईएनजी विशेषण का काम करे, किसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. जैसे लुक एट द रनिंग बॉय.
कैसा लड़का? दौड़ता हुआ.
अच्छा,
काम से पहचानना है, संज्ञा है तो जेरंड, विशेषण है तो पार्टिसिपल. बिल्कुल. श्रोत के जो हिस्से हमारे पास हैं, उनमें पार्टिसिपल का विशेषण के तौर पे इस्तेमाल का सीधा उदाहरण शायद नहीं दिया है. वो लिसनिंग फॉर फीलिंग्स वाली स्क्रिप्ट में विजिटेड, सॉ, सेड जैसी फाइनाइट क्रियाएं हैं.
हाँ,
और रिंगिंग शब्द है, पर वो शायद क्रिया वाक्यांश का हिस्सा हो सकता है, जैसे द फोन वॉज रिंगिंग. यहां ये क्रिया का हिस्सा है, विशेषण नहीं. लेकिन सार तालिका में ये कॉन्सेप्ट वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स साफ बताया गया है.
ठीक है, तो पार्टिसिपल यानी क्रिया का वो रूप जो विशेषण बन जाए. समझ गए. तो अब इन सबको एक साथ रखकर देखें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इनका जो मुख्य अंतर है उसे कैसे निचोड़ सकते हैं. सार तालिका में कहा गया है तुलना करें और अंतर बताएं.
हाँ, तो निचोड़ ये है, बहुत सरल शब्दों में, फाइनाइट क्रियाएं, फाइनाइट वर्ब्स, ये वाक्य की बॉस क्रियाएं हैं.
बॉस?
हाँ, मतलब मुख्य. ये कर्ता के नंबर और पर्सन के हिसाब से अपना रूप बदलती हैं. ये काल बताती हैं बात कब की हो रही है. इनके बिना वाक्य अधूरा है. सोचिए, ये वाक्य के इंजन की तरह हैं.
ठीक है, इंजन.
और नॉन फाइनाइट क्रियाएं, ये थोड़ी मल्टीटास्कर हैं. ये कर्ता या काल के हिसाब से बदलती नहीं. ये वाक्य में मुख्य क्रिया का काम नहीं करती, बल्कि दूसरी भूमिकाएं निभाती हैं. जैसे इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब, अक्सर संज्ञा या उद्देश्य बताने का काम.
जेरेंट,
वर्ब प्लस आईएनजी, हमेशा संज्ञा का काम.
पार्टिसिपल,
क्रिया से बना विशेषण, विशेषण का काम. पार्टिसिपल, क्रिया से बना विशेषण. ये इंजन नहीं, बल्कि गाड़ी के जरूरी पुर्जे हैं जो अलग अलग काम करते हैं.
वाह, इंजन और पुर्जे, ये अच्छा तरीका है समझने का.
और ये फर्क समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी क्रिया कब बदलती है और कौन सी नहीं, और नॉन फाइनाइट क्रियाएं क्या क्या काम कर सकती हैं, तो हम ज्यादा साफ, सटीक और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहे और लिख पाते हैं.
हाँ, वाक्यों में ज्यादा वैरायटी ला सकते हैं फिर.
बिल्कुल.
हाँ, ये बात तो है. एक ही शब्द प्ले कभी फाइनाइट क्रिया बन जाता है, ही प्लेज, कभी इन्फिनिटिव, ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो कभी जेरेंड, प्लेइंग इज फन. भाषा का ये लचीलापन कमाल का है.
है ना?
अध्याय में इन बातों को पक्का करने के लिए कुछ गतिविधियां भी दी गई हैं. जैसे वो लिसनिंग फॉर फीलिंग्स वाली स्क्रिप्ट है, उसमें पहचानने को कहा गया इन्फिनिटिव टू बिल्ड, जेरेंड क्लीनिंग, मॉडल कुड, और फाइनाइट क्रियाएं विजिटेड, सॉ, सेड.
हाँ, वो अभ्यास अच्छा है.
और एक माय एक्टिविटी कॉर्नर भी है, जिसमें फाइनाइट क्रिया, मॉडल और जेरेन का इस्तेमाल करके कॉमिक स्ट्रिप बनाने का काम दिया है।
बिल्कुल, और ये गतिविधियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। व्याकरण के नियम जानना एक बात है और उन्हें इस्तेमाल में लाना दूसरी।
सही कहा।
जब हम खुद वाक्यों में इन अलग अलग क्रिया रूपों को ढूंढते हैं या उनका इस्तेमाल करके कुछ बनाते हैं, जैसे कॉमिक स्ट्रिप, तो हमारी समझ ज्यादा गहरी होती है। वो सिर्फ रटने जैसा नहीं रहता, बल्कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान बन जाता है।
हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है फिर भाषा इस्तेमाल करने का।
निश्चित रूप से।
तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या जाना? हमने देखा कि क्रियाएं कितनी जरूरी हैं वाक्य के असली मूवर्स और डूअर्स। हमने फाइनाइट क्रियाओं को समझा जो कर्ता और काल के साथ बदलती हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। फिर हमने नॉन फाइनाइट क्रियाओं की तीन दोस्तों से मुलाकात की, इन्फिनिटिव टू के साथ क्रिया, जेरेंड आईएनजी वाली संज्ञा, और पार्टिसिपल, क्रिया से बना विशेषण जो अपना रूप नहीं बदलते पर अलग अलग काम करते हैं।
बिल्कुल।
हमने ये भी देखा कि सहायक क्रियाएं इज, एम, आर, हैव, डू वगैरह, और मॉडल्स कैन, मस्ट, शुड कैसे मुख्य क्रिया की मदद करते हैं, उसे नए मायने देते हैं।
जी।
तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि क्रियाओं के इन अलग अलग अवतारों को पहचानना जरूरी है। इससे ना सिर्फ हमारी भाषा की समझ बेहतर होती है, बल्कि हम खुद को ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं।
और जब हम क्रियाओं के इन अलग अलग किरदारों को समझ लेते हैं ना, तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है।
क्या?
सोचिए, भाषा कितनी किफायती है, कितनी एफिशिएंट है। एक ही मूल शब्द, क्रिया का बेस फॉर्म, कितने अलग अलग रूप धरकर वाक्य में अलग अलग जगहों पर फिट होकर नए नए अर्थ और काम पैदा कर सकता है।
हाँ, ये तो है। प्ले का ही उदाहरण ले।
बिल्कुल। प्ले शब्द को ही लें, ये एक्शन बता सकता है, आई प्ले, इरादा बता सकता है, आई वॉन्ट टू प्ले, या किसी गतिविधि का नाम बन सकता है, प्लेइंग इज फन। ये भाषा की एक तरह की जादूगरी है।
सच में?
अगली बार जब कोई कुछ पढ़े या लिखे तो इस नजरिए से क्रियाओं को देखना मजेदार हो सकता है कि वो कैसे वाक्य को शक्ल दे रही हैं, कैसे अर्थ बुन रही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद भाषा की असली खूबसूरती उसकी इसी बहुमुखी प्रतिभा में है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी में है, जहां एक ही चीज कई काम कर सकती है।
क्या बात है, बहुत गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है क्रियाओं की ये दुनिया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की कहानी अब थोड़ी और जानी पहचानी लग रही होगी।
उम्मीद तो यही है।
धन्यवाद।
धन्यवाद।